रॉनी मैकिंटोश न्यू साउथ वेल्स में दमकल केंद्र के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे साथ ही उन चयनकर्ताओं के दल में भी शामिल हैं जो हर वर्ष फायर एंड रेस्क्यू न्यू साउथ वेल्स के लिए नए लोगों की भर्ती का काम करते हैं। इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने में हफ्तों बीत जाते हैं। चयनकर्ता हर एक संभावी पदाभिलाषी से गहराई से साक्षात्कार करते हैं, परंतु ब्रॉनी के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ भी अलग नहीं होता। हर वर्ष सिर्फ दो औरतें ही इसमें शामिल होती हैं।
The gene pool of candidates represents a very narrow demographic in our society. So it's really validated for me the need to diversify.
साथ ही हर वर्ष इस प्रक्रिया में ज्यादातर पुरुष जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं अग्निशामक दल में भर्ती के लिए आते हैं।
It is one of the last bastions of the traditional male occupation. But with targeted recruitment and just changing roles for women in society general, we're seeing more women realizing that it's an attractive and appealing career.
पर अब मेलबर्न मेट्रोपॉलिटन फायर ब्रिगेड या MFB ने कुछ अलग करने की ठान ली है। दशकों में पहली बार MFB ने भर्ती की प्रक्रिया में औरतों और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासतों के लोगों को आगे बढ़कर इसमें शामिल होने का अनुग्रह किया है। कुल मिलाकर 700 लोगों की भर्ती को 350 पुरुषों और 350 स्त्रियों के लिए बराबर आरक्षित कर दिया गया है। MFB के मुख्य अधिकारी पीटर राव मानते हैं कि इस आरक्षण का मतलब औरतों की भागीदारी को बढ़ाना है, न कि उनके लिए इसमें आना आसान बनाना।
Recruitment process is just about getting an opportunity to do a recruit course. And a recruit course lasts for 18 weeks. And any individual, male or female, will need to satisfy the requirements of that course before they become a firefighter.
उनके अनुसार 2020 तक स्त्रियों की भागीदारी 5% तक होनी चाहिए। इस समय ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्यों के दमकल विभागों में स्त्रियों की भागीदारी कुछ इस प्रकार से है। मेलबर्न फायरफाइटर्स 3.4%, न्यू साउथ वेल्स 4.5%, साउथ ऑस्ट्रेलिया मेट्रोपॉलिटन फायर सर्विस 4.4%, क्वींसलैंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज 4.4% और नॉर्दर्न टेरिटरी की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस में मात्र 2%। पीटर साथ में यह भी मानते हैं कि अभी दमकल विभाग में ज्यादातर श्वेत पुरुष हैं जो ऑस्ट्रेलिया की भिन्नता को सही से नहीं दर्शाते।
That doesn't reflect society, that doesn't reflect the people that we serve in our community and we'd certainly be hopeful that other organisations will adopt a similar practice.
इस आरक्षण के बारे में लोगों से मिली जुली प्रक्रिया मिल रही है। रेचल काउलिंग जो कि एक दमकल अधिकारी और यूनियन की सदस्य भी है का मानना है कि इस आरक्षण की प्रक्रिया से दमकल अधिकारियों की विश्वसनीयता पे सवाल उठ सकते हैं।
They were chosen above a man that, or a different person that might have had a better ranking in the system, in the application process. I think that the young women that are applying, they will never know if they were the best candidate. They might just be selected because they were needed for the organisation for another number as another woman.
Victoria की State Emergency Services की Minister Jane Garrett का कहना है कि वह आशा करती है कि इस पहल से राजनीति और विवाद को दूर रखा जाएगा।
I'm just hoping that we can all be on the same page here. We are not changing the standards to get into the MFB or to become a firefighter. There's plenty of women who have that skill set and capacity. They just need to be given the opportunities.
दमकल अधिकारी एना श्वेगर मानती हैं इस चयन प्रक्रिया के जरिए चुने हुए लोगों के साथ काम करते हुए जीवन और मृत्यु की परिस्थिति में अपने साथी अधिकारी की क्षमता को परखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
It's extremely important. It's probably the most important aspect of the job. When we go into a house fire or any other area, we need to know that the person who's behind us has our backs and can do the job.
और अब यूनियन ने मिलकर इस प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाने और चयन को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत की कोशिशें और तेज कर दी हैं।